कल्प का अंतिम युग पुरुषोत्तम संगम युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग की टिक टिक करती अंतिम घड़ियां और अंतिम घड़ियों में स्वयं परमपिता परमात्मा के दिशा निर्देशन में साकार बाबा द्वारा तराशा गया एक अनमोल हीरा, जिनके हर कर्म में परमात्मा शिव बाबा की शिक्षा एवं अनमोल वचनों की छवि दिखती है और ज्ञान योग की चमक जन जन तक पहुंचकर लाभान्वित करती है एवं वैरमुक्त बनाती है, ऐसे अनमोल रतन को बाबा ने नाम दिया निर्वैर। हम सभी भ्राता निर्वैर जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक हाथ की ताली ही यूज करेंगे। इस यज्ञ के एक मजबूत स्तंभ भ्राता जी का जन्मोदय पंजाब में हुआ। आपने अपनी लौकिक शिक्षा प्राप्त करके 9 वर्षों तक भारतीय नौसेना में देश की सेवा की और सत्य की खोज में सदैव रहते थे। इसी खोज में आप सन 1959 में आपको सत्य जीवन सत्य बाप का परिचय प्राप्त हुआ और साकार बाबा के साथ बिताए गए क्षणों से अत्यंत प्रभावित हुए और सन 1963 में अलौकिक सेवा हेतु अपना सर्वस्व प्राण प्यारे बाबा को सौंप दिया। तब से आज तक आप अनवरत बाबा की आशाओं के अनुरूप देश विदेशों में कई सेवाओं को प्रतिपादित किया। वर्तमान में आप इस बेहद यज्ञ के हेतु विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके अनमोल वचनामृत के लिए हम सभी आत्माएं लालयित हैं। आज का विषय है श्रीमत का हाथ और बाप दादा का साथ। आदरणीय भ्राता जी,
आज बाप दादा के स्मृति दिवस पर हम सभी विशेष रूप से अमृत वेले से एक ही संकल्प लेके चल रहे हैं। कि बाप दादा के अव्यक्त मिलन से पहले सारा दिन मिलन मनाते रहेंगे। इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि वो तो निश्चित है। कि बाप दादा हम सब से मिलने आएंगे और आप सभी भाई बहनें चाहे पहली बार आए हों, दूसरी बार आए हों, अनेक बार आए हों, एक ही लगन मन में लेके आते हैं। दिखावे के लिए नहीं है, लेकिन एक ही मन में संकल्प हर एक के रहता है कि हमने जो ब्राह्मण जीवन को समझा है उसके नियम उसकी मर्यादाओं को अपनाया है और एक अलौकिक राह पर चल पड़े हैं। क्यों चल पड़े हैं सभी जानते हैं। लौकिक दुनिया की राहों में काफी भटक गए थे, सुख की खोज में, शांति की खोज में क्या क्या करते रहे सब जानते हैं। और बाबा के इस महान रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ का जब पता चलता है कि ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ वही कल्प पहले वाला रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जहां पर सच्ची गीता का ज्ञान मिलता है, और गीता में ही वर्णित सहज राज योग उसका अभ्यास कैसे करना है, उस अभ्यास के फल स्वरूप बेहद परम पिता परमात्मा से मिलन मनाते हुए आत्मा के अंदर जो कमी है उसको दूर करना, और जो सद्गुण हैं, श्रेष्ठ जीवन है, जिसमें हम आत्माएं सच्चा सुख सच्ची शांति का अनुभव करते हैं, बल्कि एक अद्भुत जानकारी मिलती है कि सिर्फ शांति और सुख की बात नहीं है, एक जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्मों की बात है। कभी सोचा भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था कि हम आत्माएं कभी परम पिता परमात्मा से सन्मुख मिलेंगे। सोचा था कभी आपने? जिन्होंने सोचा था कि सचमुच हम परमात्मा से सन्मुख मिलेंगे एक ना एक दिन, वो जरा हाथ तो खड़ा करें। कोई एक भी नहीं। तो सबसे पहली तो मन को सुख देने वाली बात, दिल को तसल्ली देने वाली बात, एक लॉटरी के रूप में कह लो, मल्टी मिलियन मल्टी बिलियन मल्टी ट्रिलियन फोल्ड लॉटरी जैसे मिल जाती है, चाहे कोई पढ़े लिखे हैं और चाहे कोई गांव के रहने वाले हैं, अनपढ़ भी हैं, लेकिन ईश्वरी परिवार के जो सदस्य वो यहां बैठे ही इसीलिए हैं कि उनको वो लॉटरी मिल चुकी है। मिली है या नहीं? मिली है? सच? तो सबसे पहली बात तो मैं यही सोचता हूं कि हम सब का जीवन धन्य हो गया जिन्हें स्वयं पिता परमात्मा का परिचय मिला। निमित्त बनी ब्रह्मा कुमारी बहनें, पर धीरे 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 पता चलता गया कि ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी कैसे ज्ञान मिला। उसके लिए निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाबा बना। ब्रह्मा बाबा भी कब बना? जब ब्रह्मा बाबा को स्वयं शिव बाबा ने डायरेक्ट अपना परिचय दिया। बाबा की जीवन कहानी जानते हैं सभी। 1936 के शिवरात्रि के समय बाबा को पहले पहले साक्षात्कार हुए। और उसके बाद ही बाबा ने अपना जो लौकिक कारोबार वो छोड़कर अलौकिक जीवन क्या होती है, उसका क्या स्वरूप होगा, वो शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार बाबा ने अपनी जीवन एक मिसाल के तौर पर हम सबके लिए इस कलयुगी दुनिया में, कलयुग के अंतिम समय में ऐसा जीवन अपना बनाकर दिखाया। किस आधार से बना? उसका आधार एक ही था। बाबा ने जब शिव बाबा को पहचान लिया, जान लिया, पहचान लिया और उसके फलस्वरूप निर्णय कर लिया कि श्रीमत से ही जीवन श्रेष्ठ बनती है, तो कदम कदम पर ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत स्वीकार की। और जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए शब्द यूज होता है आदि देव, दूसरी भाषाओं में एडम, आदम ऐसे शब्द यूज करते हैं, तो आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने इस निश्चय से कि जिसका मैंने साक्षात्कार किया है और साक्षात्कार के द्वारा जिसने मुझे रचना और रचता का पूरा ज्ञान अच्छी तरह से बताया है और उसके साथ साथ रचना में सर्वश्रेष्ठ देवी देवताओं की जो जीवन है, ऐसा दिव्य जीवन बनाने का मार्गदर्शन जिसने मुझे बताया है, उसके आदेश के अनुसार विश्व परिवर्तन के लिए, आप सोचिए कितना बड़ा कार्य है, लेकिन कराने वाला विश्व पिता है, और उनकी श्रीमत पर ब्रह्मा बाबा ने अच्छी तरह पहले समझ लिया लगभग एक साल, और फाइनल निर्णय कर लिया 1 जनवरी 1937, जब बाबा ने अपना एक पत्र लिखा विल के रूप में कि मैं अपना तन मन धन ओम मंडली माता के चरणों में समर्पित करता। बहुत बड़ा एक निर्णय 60 वर्ष की आयु में बाबा का था, किसी से पूछा नहीं, किसी को बताया नहीं, ऐसा निर्णय किस लिए किया? वो बाबा ने जिस तरह का शिव बाबा ने आदेश दिया कि आपको निमित्त बनना है विश्व परिवर्तन के लिए, तभी ओम मंडली बनी, जिसका ऑफिशियल नाम 1 जनवरी 1937 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पड़ा। बाबा को इस बात का निश्चय था कि मेरा हाथ किसके हाथ में है, मुझे गाइड करने वाला कौन है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई संत नहीं है, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है। उनके दिव्य अलौकिक हाथ में हाथ बाबा ने दिया तो क्या कहते हैं, 1 1 2 कितने बन जाते हैं, 1 1 और 2 बोलते नहीं है, 11 हो जाते हैं। निमित बाबा बना, साथ में शिव बाबा उनको गाइड करने वाला, किस तरह से गाइड किया, श्रीमत का हाथ, श्रीमत का हाथ, इसका भाव अर्थ समझना। आप देखते हैं जब सड़क पे चलते हैं, कहीं जाना आना होता है तो ऐसी पेंटिंग मिलती है इशारा करने के लिए रास्ता किधर को जाता है, हाथ का ऐसे इशारा होता है। तो कदम कदम पर बाबा को शिव बाबा की श्रीमत जब मिली, बाबा ने उसकी गहराई को जाना और समझा और उससे क्या प्राप्ति होती है, क्या जीवन बनती है, क्या संसार बनता है, इन बातों को जब अच्छी तरह से जान लिया, परख लिया और स्वीकार कर लिया, उसके फलस्वरूप ऐसा निर्णय बड़ी आश्चर्य की बात है। विश्व परिवर्तन का कार्य उसके निमित्त यूं तो सबके लिए है, लेकिन विशेष उसमें पार्ट किसका है, इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, ब्रह्मा कुमारी बहनों का नाम है। एक बहुत सोच करके ऐसा निर्णय बाबा ने लिया कि जो ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के अंदर सभी 8 के 8 ट्रस्टी, माताएं, 3 माताएं और 5 बहनें, 18 साल से ऊपर की कुमारियां, अवश्य उनके अंदर वो योग्यता पाई जिनको उन्होंने ट्रस्टी बनाया। और उनका हेड किसको रखा, मातेश्वरी सरस्वती को, वो भी नाम बाद में दिया, ओम राधे नाम था उस समय। तो ये एक बहुत ही दुनिया के लिए उस समय, समाज के लिए खास, क्योंकि हैदराबाद सिंध में स्थापना हुई थी, तो समाज के लिए एक बड़ी विचित्र बात थी, नई बात थी, और समाज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कहा जाता है जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेंगे, आंधी और तूफान। बहुत तूफान आए, जब आप यज्ञ की हिस्ट्री सुनते हैं आद की, तो बहुत सारी बातें सुनते हैं, क्या क्या रुकावटें आईं, क्या क्या तूफान आए उस समय। लेकिन बाबा ने एक बल एक भरोसा, उस एक में ऐसा दृढ़ निश्चय रखा और प्रैक्टिकल हम सबके सामने स्पष्ट कर दिया कि निश्चय में कैसे विजय होती है। कहावत है ना, निश्चय में विजय, प्रैक्टिकली कैसे होता है। जब से यज्ञ की स्थापना हुई, फिर भारत में आकर के सेवाएं शुरू हुई, जहां पर भी गए ब्रह्मा कुमारी बहनें सेवा के लिए, जहां भी गईं, देखने में फरिश्ते नजर आते थे, लेकिन लोग लोकलाज की मर्यादाओं को सामने रखते हुए डरते भी थे, लेकिन क्लब पहले वाले बाबा के जो वारिस बच्चे हैं, उन्होंने उनको पहचाना कि ये तो सचमुच फरिश्ते हैं, देवियां हैं। चाहे मम्मा, चाहे दादियां, थोड़े से भाई भी उसमें थे, लेकिन उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उससे उन्होंने पहचाना कि ये तो सचमुच इस धरा पर फरिश्ते हैं। और जिन्होंने पहचाना, वो बाबा के वारस बनते गए, कारवां चलता रहा और सबका साथ मिलता गया। शुरू में उसको कहता हूं, जब भिन्न भिन्न स्थानों से बाबा से मिलने के लिए कोई बहने या भाई आते थे तो बड़ी थोड़ी सी संख्या। हम पहली बार आए थे 1959 की बात है, जुलाई का महीना था। उस समय टोटल 6 भाई बहने थे और जो मुरली लिखती थी बहने, उन्होंने मुरली के लास्ट में फुटनोट लिख के भेजा सभी को, सेंटर्स को। इस समय मधुबन में ब्राह्मणों की रिमझिम है, 6 लोग आए हुए बाहर से। और मधुबन में रहने वाले कितने थे मालूम है आपको? 4-6 तो माताएं बुजुर्ग थीं, लेकिन उसके अलावा जो मुरली की डिपार्टमेंट देखने वाले या जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, पत्र व्यवहार आता जाता है उसको संभालने वाले या मैनेजमेंट को देखने वाले, टोटल 10 लोग थे। तो आप सोचिए, उस समय अगर हम सोचते बाबा जो कहता है कि विश्व का परिवर्तन करना है और उस समय थोड़े से लोग आ रहे, लेकिन बाबा का निश्चय उस समय भी ऐसा ही था। मुरलियां आप उस समय की देख लीजिए, शुरू की, बीच की, बाबा के अव्यक्त होने तक की, वो निश्चय कि एक दिन सारे विश्व से बाबा के बच्चे आएंगे। ये दिव्य दृष्टि, ये दूरदर्शिता, ये देने वाला कौन? वो शिव बाबा का श्रीमत का हाथ। ऐसा दृढ़ निश्चय जो भी भाई बहने उस समय जिन्होंने ज्ञान लिया, जो आज बड़ी उम्र में है, वो भी सभी 60 से ऊपर हैं, लेकिन उनका भी निश्चय कितना दृढ़ कोई हिला नहीं सकता, कोई इधर से उधर नहीं कर सकता, कोई उनको दूसरे और किसी लालच में नहीं ले सकता है। बड़ी साधारण जीवन, साधारण पैरवाश, खान पान भी बहुत सात्विक लेकिन बहुत कम लाइट, लेकिन एक धुन सबके मन में। जो भी बाबा के निमित्त बने बच्चे, उनके मन में एक ही धुन, घर घर में संदेश कैसे दिया जाए। बाबा के जो बच्चे कलप पहले वाले हैं, उनको कैसे ढूंढें? हमारी एक, आप लोग इतना नहीं जानते हैं, बड़ी दादियों में से एक छुग्गी दादी थी, बॉम्बे में थी ब्रिजेंद्रा दादी के साथ, बाद में बड़ौदा में आई। तो वो रोज सवेरे सवेरे प्रभात फेरी निकालती थी। थोड़े से लोग, तो किसी ने उनसे पूछा, आप क्या कर रही हो, इतने थोड़े से लोग लेकर के आप प्रभात फेरी निकाल रही हो? कहती है, मेरे भाई बहने बहुत गुम हो गए हुए हैं, उनको ढूंढ रही हूं। इस तरह की भावना सभी के दिल में थी और उसी की रिजल्ट है कि साकार बाबा ने जो एक तो श्रीमत दी जिससे अपना जीवन श्रेष्ठ बना हर एक का, सभी जानते हैं श्रीमत में क्या क्या है, कभी अमृत वेला मिस ना करो, कभी मुरली मिस ना करो, अपने चार्ट पर पूरा ध्यान दो, कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, दूसरों की सेवा का ख्याल रखो, अपनी मन वाणी कर्म पर पूरा अटेंशन रखो, श्रीमत की कई बातें हैं। फिर भी बाबा कहते थे जो कारोबार में हैं, लौकिक दुनिया की बातें आती हैं, अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो बाबा से पूछे, और बाबा से पूछते थे, बाबा से पूछ करके उसके अनुसार जो भी कार्य करते थे उसमें सफलता मिलती थी। तो बाबा की श्रीमत का जो इशारा है, हालांकि हर एक मुरली के अंदर आप देखेंगे, साकार मुरलियों में भी अव्यक्त मुरलियों में भी बहुत क्लियर है। बड़ी दादियों की क्लासेस में इतनी गहराई से उसको क्लियर करते हैं, वो बड़ी बहनों की क्लासेस में इतना अच्छी तरह से क्लियर करते हैं, लेकिन बाबा फिर भी क्या कहते हैं, माला कितनी बनती है, पास विद ऑनर कितने होते हैं, 8, आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, 8 की, फिर उसके बाद 108 की, फिर उसके बाद 16108 की, फिर उसके बाद 9,16,108। अगर ये हम सोच के चलें कि वो 8 तो पास विद ऑनर हो गए, तो हम क्या कर रहे हैं अभी? तो बाबा का इशारा, श्रीमत क्या है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, हम क्यों नहीं आए उसमें? जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसे लक्षण आएंगे। अगर ये मान के चलें कि 8 और 16,108 तो भाई वो तो बाबा ने पहले से पूरे चुन लिए, अभी हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। हम हरेक को बाबा ने इशारा दिया है, आप अपना पुरुषार्थ इतना अच्छा करो कि अंतिम समय आप हंसते हंसते शरीर छोड़, खुशी से शरीर छोड़। क्यों? एक ही बात के निश्चय से आप उस चीज को प्राप्त करेंगे कि बाबा की श्रीमत को मैंने बिल्कुल एक्यूरेटली फॉलो किया, बाबा की श्रीमत का जो हाथ जिस तरफ इशारा कर रहा था मैंने उसको ही सामने रखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा, दाएं बाएं कहीं नहीं देखा, वही एक सामने अपना लक्ष्य रखा। इस तरह का अभ्यास जब करें तो आप देखेंगे कि आपके अपने जीवन में हर पल बड़ा उमंग रहेगा, बहुत खुशी रहेगी और फरिश्ता स्वरूप क्या होता है उसके अनुभव में चले जाएंगे। बाबा मन के अंदर सदा रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। जो बाबा कई बार व्यक्तवाणी में भी कहते हैं, आपके दिल में बाबा और बाबा के दिल में हम बच्चे, इस तरह का समीपता का संबंध बाबा के साथ अगर हमारा बाबा के इशारे अनुसार बन जाता है तो मैंने देखा, स्वयं अनुभव करता हूं, दादियों को देखता हूं, दूसरी कोई बात मन में नहीं आती है, पर चिंतन में मन नहीं जाता है, व्यर्थ बातों में मन नहीं चलता है, लगता है ये सब हमारे काम की चीज नहीं है, इससे हमको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जिससे हमें सच्चा सुख मिला है इस जीवन के अंदर, वो तो ईश्वरी ज्ञान है। किसमें है ज्ञान? मुरली में है। और दूसरा, जो बाबा की दी हुई श्रीमत के अनुसार ब्राह्मण जीवन की जो धारणाएं हैं उनको अपनाने से सुख मिला है। और तीसरा, सुख बांटने से और सुख बढ़ता है। जो चीज मुझे प्राप्त हुई दूसरों को देते हैं, निस्वार्थ भाव से देते हैं, ये भी नहीं इनकी सेवा करेंगे फिर इससे ये मकान में मेरे को मदद करेगा फिर ये नहीं, निस्वार्थ भाव से जो सेवा करेंगे तो जिनकी सेवा करेंगे वो भी बाबा के वारिस बन जाएंगे, और आप सेवा करेंगे तो आपका अपना भाग्य और अनेक गुना ऊंचा हो जाएगा। ये अनुभव करने की बातें हैं। और उसके फलस्वरूप जो हम सब चाहते हैं, जैसे आज का दिन बाबा का अव्यक्त दिवस, बाबा का वायदा है सारा दिन बाप दादा बाप बच्चों के साथ रहे। जब बाबा अव्यक्त हुए और उसके 3 दिन के बाद की मुरली कल शाम को आपने सुनी, दादी ने सुनाई ना, सुनी आप सब ने, बहुत क्लियर सब कुछ बाबा ने उसमें बता दिया। उस मुरली को अगर सामने रखें आप सोचिए कितने वर्ष हो गए, 69 में 21 जनवरी के दिन वो मुरली चली है। आज भी उस मुरली को आप पढ़िए, आपको लगेगा जैसे आज बाबा हमको सुना रहे हैं। तो बाबा की दी हुई श्रीमत उसको समझना, उसकी गहराई में जाना और उसको जीवन में अप्लाई करना, प्रैक्टिकल में, सिर्फ शब्दों से नहीं। हम वर्णन करते हैं, अच्छी बात है, वर्णन करने से दूसरों की सेवा होगी, लेकिन जो वर्णन करते हैं उसका स्वरूप हमें बनना पड़े, तब उसका असर होगा। और उसके लिए हर समय बाबा का साथ चाहिए। बाबा ने कहा है, आप जिस समय संकल्प करते हैं, दिल से बोलते हैं मेरा बाबा, बल्कि इतना ही कहते हैं बाबा, तो बाबा सन्मुख आ जाता है, बाबा साथ होता है, बाबा वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराता है, बाबा वो शक्ति देता है जो उस समय आवश्यकता होती है, बाबा वो टचिंग देता है जो जिस चीज के लिए हम कभी कभी सोचते हैं इसका ये करें ना करें, वो क्लियर टच होता है कि क्या करना चाहिए। कदम कदम पर बाबा की मदद कैसे मिलती है उसका अनुभव करना हो तो मोबाइल यूज करो बस। हाँ, मोबाइल यूज करने का मतलब ये नहीं उसमें गीत भर लो और वो सुनते रहो, वो नहीं। ये जो मोबाइल अभी बताया, दिल से बाबा की तरफ मन को ले जाओ। जिसको बाबा ने कई बार मुरली के अंदर वर्णन किया है, मन मना भव, मन मेरे साथ लगाओ। और कुछ नहीं कहा है, ये नहीं कहा है कि भोग बना के मेरे सामने रखो तब मैं आपसे बात करूं, नहीं। किसी समय भी कहां पर भी, इसलिए बाबा ने, साकार बाबा ने मधुबन में हर एक कमरे में, हर एक बरांडे में, बल्कि बाथरूम में भी वो छोटे छोटे लिखत लिखवा दी थी, शिव बाबा याद है। क्योंकि बाबा जानता है कि आत्माएं भूल जाती हैं, तो इनको याद दिलाने का ये एक सहज तरीका है। व्यर्थ संकल्प ना करें, शिव बाबा के साथ मन लगे तो छोटे छोटे वो साइन लिखवा करके हर एक रूम के अंदर लगा दिए थे, हर एक बाथरूम के अंदर भी लगा दिए थे। तो अपने आप से हमें ये पूछना है, दूसरों की बात छोड़िए, अपने आप से बीच बीच में पूछना है कि मुझे बाबा याद है। क्योंकि बाबा याद होगा तो बाबा की याद की का स्वरूप है आपके नैनों में मुस्कान हो, हर समय आप लाइट होंगे। हाँ, बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा भी कहता है शिव बाबा को याद करो, तो शिव बाबा का स्वरूप क्या है सोचिए। हाँ, वो मोटा स्वरूप है जो पूजते हैं भक्ति में शिवलिंग के रूप में, नहीं। बाबा ने उसको बहुत महीन भी कर दिया, लेकिन साथ साथ में फिर देखा कि ये इतनी महीनता में इनका मन नहीं लगता है, तो फिर कहा अच्छा ठीक है। जैसे तारे रात को देखते हो ना, तो आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। उस स्वरूप में बाबा को याद करो और आप देखिए, ट्राई करके, एक हफ्ता ट्राई करके देखो क्या आपको उससे प्राप्ति होती है। दोनों को साथ देखो, बल्कि तीनों को साथ देख लो। एक त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर, दूसरी त्रिमूर्ति बन जाएंगे आप, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो बाप दादा के संग का रंग आत्मा पर जब लगता है तो समानता में आते जाते हैं। और जितनी प्रैक्टिस करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते हैं, जितना अटेंशन रखते हैं, जितना ध्यान रखते हैं, साइलेंस में जाते हैं, मन उस तरफ जाता है, उसके फलस्वरूप पता लगता है कि शिव बाबा क्यों कहता है मुझे निरंतर याद करो। बहुत उसके अंदर खजाने भरे हुए हैं, ऐसे खजाने जो हम आत्माएं चाहती हैं उनका अनुभव करना, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। कभी ट्राई करके देखो अच्छी तरह से, जैसे यहां अभी टाइम मिलता है तो बैठ करके अभ्यास करते हैं तो पता लगता है साइलेंस का क्या आनंद है, शांति क्या चीज है, पॉजिटिव शांति किसको कहते हैं और शांति से शक्ति कितनी मिलती है। तो साकार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कोशिश की। हम लोग लास्ट में बाबा से जब मिलते थे तो बाबा अपनी तपस्या में रहते थे और उस समय दृष्टि ऐसे देंगे जो हम कुछ कहना चाहें, बोलना चाहें, पूछना चाहें, हिम्मत नहीं होगी हमें बोलने की, बल्कि बाबा की तरफ देखते, बाबा की दृष्टि पड़ते, ऐसी स्थिति बन जाती। इतना अति इंद्रिय सुख में चले जाते, इतना अव्यक्त अनुभव होता, ऐसा वाइब्रेशन बाबा के चारों तरफ उस समय महसूस होता, ऐसे प्रकंपन जो एकदम इस धरती से ऊपर ले जाए हमें। दिल होती थी बस बाबा ऐसी दृष्टि देता रहे और हम लेते रहे। थोड़े टाइम के बाद फिर बाबा पूछे, बच्चे कुछ पूछना है तो यही मन में आएगा, बाबा दृष्टि देते रहो बस, कुछ पूछने की जरूरत नहीं। वो है बाप दादा का साथ। जितना उसमें आप रहेंगे संघ का रंग लगता रहेगा, तब बाप समान बनते जाएंगे। जो बाबा बार बार इसी एक बात के लिए मुरलियों के अंदर इशारा देता है, फॉलो फादर, सुना है, पढ़ा है, फॉलो फादर, क्या फॉलो करें और कुछ नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लक्ष्य रखा कि मुझे 8 घंटा कैसे भी बाबा के साथ मन लगा करके, 24 घंटे में से 8 घंटा कम से कम मुझे इतना टाइम बाबा के साथ मन लगा करके रहना है, और वो बाबा ने कहा जब 8 घंटा रहेंगे तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे, तब पुराना हिसाब किताब खत्म होगा और तभी आप इतना श्रेष्ठ बन सकेंगे। मनुष्य से देवता बनना, नर से श्री नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, और एक जन्म के लिए नहीं अनेक जन्मों के लिए बनना, कितने जन्म तक बनेंगे? 21 ही बनेंगे, उसके बाद हम तो अभी भी सुनते हैं कईयों का नाम श्री लक्ष्मी, शब्द श्री नहीं है, अभी लक्ष्मी है, नारायण है, अभी तक भी चलता है। तो बाप दादा का साथ होगा तो बाप के समान बनते जाएंगे और 8 घंटे का लक्ष्य रखना जरूरी है। जब 8 घंटे तपस्या करेंगे, आप कहेंगे क्या बैठ करके करनी, नहीं, सुबह शाम बैठ के करो, लेकिन दिन भर में बाबा ने कई तरीके से बताया है, भिन्न भिन्न संबंध से, भिन्न भिन्न स्वरूप से, लेकिन एक दिल में आपको पक्का हो कि सचमुच मैं बाबा के याद में था, याद में थी। तो जो बाबा की याद में है वो बाबा के साथ है, ठीक है। और उसके लिए क्या कहते हैं, जो पिया के साथ है उसके लिए कौन सी बरसात है, सब प्रकार की बरसात है, ज्ञान की भी है, योग में तो शक्ति मिलती है, लेकिन गुणों की भी बरसात है और ज्ञान रत्नों की बरसात है। ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम बाबा की याद में बैठेंगे।
तेरी पास